उदाहरण दिया है कि जैसे कोई मदिरा पिया हुआ व्यक्ति, वह कुछ भी याद नहीं करता, झूमता रहता है, उसके कंधे के ऊपर रखा हुआ वस्त्र नीचे गिर गया तो पता नहीं, और कंधे पर पड़ा है तो पता नहीं, गलियों में पड़ा है तो पता नहीं, मकान में पड़ा है तो पता नहीं। ऐसे ही जो मेरे उस ध्यान रस के अंदर मग्न रहता है, उसकी मस्ती तो और विचित्र होती है, शरीर रहे तो परवाह नहीं, शरीर न रहे तो परवाह नहीं, इस प्रकार से उसकी स्थिति होती है। ये मेरे ध्यान से उसको उपलब्ध होता है। तो देखो मां, उसके लिए फिर और कोई जानने लायक बात नहीं रहती, सब जान लेता है, स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। है क्या भाई, ब्रह्म है, जीव है और एक आत्मा है, तीन ही तो बात है, तीन तो कहने के लिए तीन है वास्तव में एक ही। जब ये भूतों में, इंद्रियों में, अंतःकरण में संबंध करने के लिए दौड़ता है, तब इसका नाम जीव हो जाता है। और जब उसको समझाने समझा करके बताए जाते हैं कि देखो ये तो जीवन मुक्त है, तो उनके चेतन को जीव न करके आत्मा कहते हैं। और आत्मा है क्या, वास्तव में परम ब्रह्म संगीत है, वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म का स्वरूप है वही आत्मा है, ब्रह्म का स्वरूप है वही जीव है। अरे सिपाही कौन होता है, सिपाही वो होता है जो सिपाही की ड्रेस पहन लेता, नहीं तो है तो आदमी, आदमी से अलग तो सिपाही होता नहीं, आदमी से अलग सिपाही होता नहीं, क्योंकि सिपाही की ड्रेस पहन ले इसलिए वो सिपाही है। इसी प्रकार से विषयों के साथ संबंध करता है तो वो जीव है, विषयों के साथ संबंध नहीं करता है तो वो ब्रह्म है। बिल्कुल सीधी साधी बात है। जब वो भगवान के ध्यान में इस प्रकार से मस्त हो जाता है, सब प्राणियों में भगवान को देखता है, तो भाई वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार की ये ध्यान की बात बताई। देवहूति ने कहा कि बहुत अच्छी बात बताई, और हे कपिल, मुझे बताओ कि आपके भक्त कैसे कैसे होते हैं, भक्तों का क्या क्या रूप होता है, कैसे कैसे भक्त है, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, काल की गति क्या है, यह भी साथ साथ में आप हमको बता दीजिए। भगवान कहते हैं कि भाई देखो अब क्या बतावें, हमारे भक्त कई प्रकार के होते हैं माता जी, जो हिंसा करता है, दंभ करता है, मात्सर्य करता है, मात्सर्य दोष रखता है और क्रोध करने वाला होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं किसी न किसी जगह मुझे मानता है, वो मेरा तामसी भक्त होता है। देवी के पास में गए, हमारा ये काम कर दो, हम इतने बकरे चढ़ा देंगे, वो तामसी भक्त होता है। और विषयान अभिसंधाय, और विषयों की इच्छा से जो मेरा भजन करता है, यश की इच्छा से करता है, ऐश्वर्य मेववा अथवा ऐश्वर्य के लिए जो करता है, और अर्चादौ अर्चयेद, और केवल पूजा के समय में ही पूजा करता है, भीतर में कामना रखता है, वो मेरा राजस भक्त होता है। और जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है और इसीलिए कर्म करता है कि नहीं मुझे कर्म करने चाहिए, यजेद यष्टव्यम, मेरा पूजा करना धर्म है इस भाव से पूजा करता है, वो मेरा सात्विक भक्त होता है। लेकिन इनसे भी बड़ा एक निर्गुण भक्त होता है, हे माँ, वो मुझसे कुछ भी नहीं चाहता और मुझसे प्रेम करता है, कुछ भी नहीं चाहता और मुझसे प्रेम करता है, ऐसे भक्त की क्या बात कहूं, बहुत ऊंचा वो भक्त है। वृंदावन में एक भक्त थे, भगवान का दर्शन करने जाते थे, भगवान उनको दर्शन नहीं देते थे, बहुत सुनी हुई कथा है। भगवान उनको दर्शन नहीं देते तो वो लोगों से पूछते कि आज भगवान की मूर्ति नहीं, श्री विग्रह नहीं दिखाई दे रहा, बात क्या क्या है, तो सही सामने क्या, वो ऊंचा होकर देखे भाई हमको तो ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, दस दिन हुआ, पंद्रह दिन हुआ, वो भक्त को भगवान दिखे ही नहीं और लोगों को भगवान दिखे, तो मन में बड़ी ग्लानी हुई उस भक्त को कि ओहो हमारे ऐसे पाप हैं कि भगवान हमको देखना ही नहीं चाहते हैं, अब हम आज रात को यमुना मैया के अंदर डूब के मर जाएंगे, हम तो अब यहाँ आएंगे नहीं, ऐसे पाप किए हुए हम, भगवान हमको देखना भी नहीं चाहते। उन्हीं भक्तों में एक भक्त ऐसा था, वो आके रोज दर्शन करता था, उसके शरीर में थी कोड, भगवान ने उसको स्वप्न में दर्शन देके कहा कि देखो भाई तुम अमुक अमुक गली में चले जाओ और वहां पर एक महात्मा रात्रि के समय में यमुना जी की तरफ जाएंगे, उनका तुम पैर पकड़ लेना और कह देना कि तुम्हारे वचन निकाल दो कि हमारे कोट दूर हो जाए, तुम्हारा कोट दूर हो जाएगा। अब वो उधर भगवान ने उसको यूं कह दिया। अब वो कोडी भक्त था, वो उसी गली के अंदर जाकर के पड़ गया, रात्रि में आवे उसको देखे देखे कौन आएगा कौन आएगा। अब वो तो उधर तो यूं प्रतीक्षा कर रहा है, वो भक्त है बड़ा दुखी हुआ हुआ कि भगवान हमको दर्शन नहीं देते, ऐसे हम पापी। वो बड़े तेजी से जा रहा था यमुना जी में डूबने के लिए और रस्ते के अंदर ही वो कोडी भक्त मिल गया, जाते हुए कि कोडी भक्त ने चरण पकड़ लिए कि बाबा कहाँ जा रहे हो, क्यों क्या बात है, नहीं नहीं ठहरो ठहरो ठहरो, आप बहुत ऊंचे भक्त हैं। अरे मैं काहे का भक्त हूँ भाई, मुझे तो भगवान दर्शन ही नहीं देते, मैं मंदिर में जाता हूँ दर्शन नहीं देते हैं। हम भक्त काहे के कहने, नहीं आप तो बहुत बड़े भक्त हैं महाराज, आप अपने मुख से एक बार कह दो कि मेरा कोट दूर हो जाए। अरे कह कैसे दूं, मुझे मेरी जबान पर विश्वास नहीं है, कैसे कह दूं? कह नहीं आप तो मरने ही जा रहे हो ना, तो आप तो अपनी तरफ से शब्द निकाल दो बाबा, फिर होगा जैसा होगा, जैसा होगा जैसा होगा मेरे भाग्य में होगा वैसा हो जाएगा, आप शब्द निकाल दो। उस भक्त ने देखा कि मेरा समय यूं ही ले रहा है। अच्छा बाबा, मेरे कहने से तेरा कोट दूर होता है तो तेरा कोट दूर हो जाए। ऐसा कहना हुआ कि उसका कोट दूर हो गया और भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए तो वो भक्त बड़े आश्चर्य में डूबा, भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज ये इसी गंदी गली है, यहाँ कोई आप दर्शन दिए हैं? वहां तो दर्शन देते नहीं, यहाँ दर्शन दिए। क्या रे भाई, दर्शन क्या दिए, आज मैं तुम्हारा दर्शन करने लायक बन गया इसलिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। कि क्यों? अरे इतने दिन तक तुमने हमसे कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं चाहा, तो तेरा ऋण मेरे अंदर था, तो जैसे कोई ऋणी आदमी अपने दाता के सामने जाने में संकोच करता है, छिपा रहता है, ऐसे मैं वहां देखता था कि कोई तो मुझसे क्या चाहता है, कोई मुझसे क्या चाहता है, कोई मुझसे क्या चाहता है। तुम ऐसे थे कि तुमने मुझसे कुछ भी नहीं चाहा और हमसे प्रेम कर लिया। अब बताओ, मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने लायक था क्या? इसलिए मैं अपना मुंह छिपाए रखता था। आज तुमने अपने मुख से कहा कि इसका कोट दूर हो जाए, तो तुम्हारे ऋणों में से थोड़ा सी ऋण को पूरा करने का आज मौका मिला, तुम्हारे वचनों की सेवा करने का मौका मिला, तो अब मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने लायक रह गया हूं और कोई बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो भक्त होते हैं, कहते हैं मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को सुनने मात्र से जो मेरे से प्रेम कर लेते हैं और मेरे से कुछ भी नहीं चाहते हैं, और तो और माँ सालोक्य सारष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत है, सालोक्य नहीं चाहते, भगवान का लोक नहीं चाहते और भगवान का ऐश्वर्य नहीं चाहते, भगवान की समीपता भी नहीं चाहते, भगवान की सरूपता भी नहीं चाहते और सायुज्य भी नहीं चाहते, भगवान के अंदर एक में एक हो जाए ऐसा भी नहीं चाहते, और मेरे अंदर प्रेम करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो निर्गुण भक्त होते हैं, वो सबसे ऊंचे भक्त होते हैं। ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर देना चाहिए, सब प्राणियों में प्रेम करना चाहिए, सरलता का व्यवहार करना चाहिए, मेरे गुणों को सुनकर के प्रसन्न रहना चाहिए। इस प्रकार से जो करता है वो मेरा भक्त होता है। और माँ जो मंदिरों में जाता है बहुत अच्छी बात है, इतने अंश में बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरों के साथ द्वेष करता है, किसी के साथ झूठ बोलता है, किसी के साथ कपट करता है, किसी के साथ द्वेष करता है, वो वास्तव में मेरा असली भक्त नहीं है। वो भूतक ग्रामा वो मानने दूसरे प्राणियों का अपमान करने वाला भक्त है, वो भक्त मेरे में और उन दोनों के बीच में भेद रख करके चलता है, वो श्रेष्ठ भक्त नहीं है। श्रेष्ठ भक्त नहीं, यही बात कही भगवान ने। देखो मुझे बहुत प्रिय है, सारे जीव प्रिय है, लेकिन उनमें भी मुझे मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है। मनुष्यों में भी जो वर्णाश्रम का पालन करने वाले वो प्रिय है, उनमें भी मुझे ब्राह्मण प्रिय है, ब्राह्मणों में मुझे वेदज्ञ प्रिय है, वेदज्ञों में तात्पर्य को जानने वाले वो प्रिय है, तात्पर्य को जानने वालों में से भी संशय का छेदन कर देने वाले, कोई जिनके मन में संदेह नहीं है वो मुझे प्रिय है। संदेह रहित ब्राह्मणों में भी वो मुझे अच्छे लगते हैं जिनका किसी प्रकार से कहीं संसार में मोह नहीं, आसक्ति नहीं है, और आसक्ति रहित वालों में भी मुझे वो प्रिय लगते हैं जो सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर देते हैं, और जो मुझे अर्पित करके जो रहते हैं, इनसे बढ़कर संसार में किसी को नहीं देखता हूँ। इस प्रकार से ये भक्त मुझे बहुत श्रेष्ठ लगते हैं। मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानिनः, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। इसलिए सारे संसार के मनुष्यों को ये चाहिए कि जितने जीव हैं ये साक्षात भगवान के स्वरूप है, भगवान की कला इनके अंदर मौजूद है, ऐसा मानकर जो सारे प्राणियों को अपने मन ही मन से प्रणाम करता है, हे माँ वो मुझे सबसे ऊंचा भक्त लगता है। ये मैंने आपको भक्ति की बात बताई है। और संसार के अंदर जो परिवर्तन होता है वो काल शक्ति से ही होता है, इस काल के लिए किसी का कोई पक्षपात नहीं है। काल के कारण से ही वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करते हैं, जितनी वनस्पतियां ये फल भी काल के द्वारा ही परिपक्व होकर के देती है, नदियां बहती है, अग्नि अंधे सगिरिभिर भूनमज्जति मद्भयात्, और इसी काल शक्ति के द्वारा ये पृथ्वी है, ये पर्वतों सहित कहीं सागर के अंदर डूबती नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा भय समुद्र को भी भय, पृथ्वी को भी भय, माने मेरा काल मेरा भय सब जगह है, सबका नाश करने वाला है काल, लेकिन काल का नाश करने वाला कोई भी नहीं है। देखो तो सही, आप बहुत ध्यान देवे, देखो तो सही माँ, इस काल के वश के अंदर सब के सब प्राणी हैं, लेकिन फिर भी इस काल की गति को नहीं समझ रहे हैं। काल सबको इधर से उधर, विषयों को इधर से उधर कर देता है, प्राणियों को इधर से उधर कर देता है, लेकिन प्राणी जहां भी जाता है वहां पर मोह कर लेता है। यम यम अर्थम उपादत्ते, जिन जिन चीजों को यह मनुष्य सुख की इच्छा से ग्रहण करता है, काल दुख पैदा करके और उनको उससे अलग कर देता है, और बड़े दुख के अंदर वो जी रहा है, फिर भी वो काल को नहीं पहचानता है। नरक के अंदर भी जाता है, वहां भी सोचता है कि भाई अब यहां टिकाव होगा, और वहां भी उसका टिकाव नहीं होता, तो वहां पर भी वो काल से नहीं डरता है। कैसी इस जीव की दुर्दशा हो रही है। संदयमान सर्वांग, काल काल के द्वारा ऐसी उसकी दशा हो जाती है। देखो तो सही, जवानी में बहुत वो मौज करता है, बुढ़ापा आता है, तरह तरह की बीमारी उसके अंदर लग जाती है, अब सारे अंग अंग में पीड़ा हो रही है, फिर भी यह संसार से मोह को नहीं छोड़ता है। उस समय में आक्षिप्तात्मेन्द्रिय स्त्रीणाम असतीनां च मायया रहो रचितया लापई शिशुनाम कलभाषिणाम, वह बच्चों से एकांत में बैठ करके सुखी होना चाहता है, स्त्रियों से एकांत में बैठ करके बात करके सुखी होना चाहता है। अरे ये कहां तक सुख मिलेगा, कितनी दूर तक सुख मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा। गृहेशु कूट धर्मेशु, अरे गृहस्थाश्रम है, इसमें सब अपने अपने मतलब के द्वारा यहाँ रह रहे हैं, एक दूसरे से एक दूसरा छिपा छिपा के जी रहा है, और यहां पर ये सुखी होना चाहते हैं, और ये सुखी होकर के और दुख का प्रतिकार करना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं मैया, कभी नहीं होगा। पुष्णाति येषां पोषेण, इसको विचार करना चाहिए कि जो हमसे पोषित होने वाले हैं वो हमको क्या पोषित करेंगे, कोई पोषित नहीं कर सकते। इतना स्वार्थ का ये जंजाल है कि वार्तायाम लुप्यमानायाम, जब यह दूसरों का पोषण करने में समर्थ नहीं होता है, तब इसके भीतर से सब अपना अपना संबंध तोड़ देते हैं, और वह ऐसा ही हो जाता है जैसे बैल बूढ़ा होता है, गाड़ा और गाड़ा गाड़ी खींचने में समर्थ नहीं होता, उस बैल की जो दशा होती है, ऐसी परिवार के अंदर उस बुढ़े आदमी की दुर्दशा होती है। नाद्रियंते यथा पूर्वम, पहले जब वो घर में आता था तो बाल बच्चे दौड़े दौड़े जाकर के सामने जाते थे, लाते थे, बड़े प्रेम से घर के अंदर बैठाते थे, अब बूढ़ा हो गया बेचारा, अब वो कुटुंब को वैसा सुख दे नहीं सकता, तो उसका वैसा आदर भी नहीं होता, फिर भी वो बूढ़ा पड़ा पड़ा जीने की इच्छा करता है। जरयोपात तो वैरूप्य, जरा के द्वारा चमड़ी लटक गई, आंखें अंदर बैठ गई, नाक से पानी निकल रहा है, मुंह से लार निकल रहे हैं, बार बार कपड़े खराब हो रहे हैं, फिर भी वो जीने की इच्छा करता है। और तो और आस्ते अवमत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरण, जैसे कोई घर के अंदर कुत्ता घर की रखवाली करता है, ऐसे उसको घर की रखवाली के अंदर रख रखा है, और जब वो और मरने लगता है, श्वास निकलने लगते हैं, तब उस समय में बूढ़ा वृद्ध अवस्था में कफ तो बड़ा हुआ रहता ही है, अब वो कफ भी गले के अंदर अटकता है और श्वास भी अटकता है, कफ और वो पानी और वो श्वास दोनों एक साथ गले में आते हैं तो खर खर की आवाज आती है, उस समय में श्वास लेना उसके लिए मुश्किल होता है, बार बार उसको मूर्छा आती है, फिर लोग जाकर उसको वाच्य मानो भी उसके साथ बोलते हैं और उससे बतलाते हैं, फिर भी वो सुन नहीं सकता है, उसके प्राण शिथिल हो जाते हैं, और केवल कुटुंब के भरण पोषण में रहा, इस कारण से अब उसका हिसाब किताब लेने के लिए यमराज जी के दूत आते हैं और कहते हैं अब चलो तुम, अब हमारे साथ चलो, तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। जैसे कोई चोरी करके आकर छिप जाए किसी मकान में और पुलिस वाले आ जाए कि निकलो बाहर, ऐसे ही वो यमराज जी के दूत आके कहते हैं कि अब चलो यहां से, पकड़ लेते हैं उसको। उरु वेदनया, इतनी वेदना होती है यमराज जी के उन दूतों के द्वारा, जब कोड़ा पड़ता है डंडा पड़ता है तब इतनी वेदना होती है शरीर के अंदर, जब वो सब के सब संधि स्थान टूटते हैं, तो उस समय में वो मूर्छित हो जाता है और उस अस्त भी उसके उसकी बुद्धि काम नहीं करती, एकदम मूर्छित हो जाता है। और फिर यमराज जी के दूत जब उसको ले जाते हैं, उस समय में उनको देख करके डरता है, डरने से उसके मलमूत्र निकलता है, और फिर यमराज जी के दूत यातना देह में ले, उसके यातना देह को ले जा करके पाशों के अंदर बांध करके बुरी तरह से उसको मारते मारते ले जाते हैं। माता 99,000 योजन वो मार्ग है, उस 99,000 योजन मार्ग में तपी हुई जगह है, बालू वहां पर बिछी हुई है गर्म गर्म, और इतना मारते हैं पीटते हैं कि इतनी बड़ी जगह को 3 मुहूर्त में पार कराया जाता है। शरीर को उस बालू के साथ चिपका देते हैं, तांबे के साथ चिपका देते हैं, और ऊपर से कोड़ा पड़ता है। नीतः प्राप्नोति यातना, इतनी भयंकर उसको यातना मिलती है मार्ग में, वो तड़पने लगता है, और फिर उसको नरकों में ले जाते हैं। तरह तरह से उसको नार की यातना भोगनी पड़ती है, पर्वतों से गिराना हो, हाथियों से रुंधवाना हो, और उसके अंग अंग को काटना हो, बहुत उसकी दुर्दशा होती है। ये तो मां उनकी दशा है कि जो केवल कुटुंब का भरण पोषण करते हैं उनकी, इसके अलावा जो पाप करते हैं उनकी तो बात ही अलग है, केवल कुटुंब के भरण पोषण में लगे उनकी ये दुर्दशा होती है। भगवान बड़े दयालु है, फिर भगवान को दया आती है कि अरे राम राम राम, इतना ये कष्ट पा रहा है, तब भगवान दया करके उसको मानव शरीर में भेजते हैं। मानव शरीर में भेजते हैं तो सबसे वह पहले वो पुरुष के खाद्य में आता है, पुरुष का अंश बनता है, फिर माता के उदर में रहता है, और फिर माता के उदर में वो धीरे 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 बढ़ता है। 1 रात्रि में वो जल के रूप में रहता है, 5 रात्रि में बुदबुदे के समान होता है, और 10 दिन के बाद वह एक छोटे से बोर की आकृति वाला बनता है। 4 महीने जब होते हैं तब उसके हाथ पैर आदि उसमें से निकलने चालू होते हैं, चमड़ी आनी चालू होती है, रोम वगैरह पैदा होते हैं, और फिर उसके हृदय भी पैदा हो जाता है, फिर भूख प्यास भी उसको लगने लगती है। इस प्रकार से माता के द्वारा खाए हुए अन्न से उसका पोषण होता है, और माता जब खट्टी वट्टी कोई चीज ले लेती है या मिर्ची की चीज ले लेती है, गर्म चीज ले लेती है, तो उससे उसको बहुत पीड़ा होती है। मातृ भुक्ते उपस्पृष्ट है सर्वांगोत्थित वेदन है, सारे अंग में माता के कोई विषम पदार्थ के खा लेने पर उसके अंग अंग में वेदना होती है, और अब वहां पर एक जैसे वो पड़ा रहता है गर्भ में, और उसका सिर वगैरह कहीं इधर उधर हिल नहीं सकता है। भोगन पृष्ठ शिरोधर है, अब वो सिर तो गया उसका नीचे, पैर आ गए ऊपर, इस प्रकार से वो बहुत दुखी होकर पड़ा रहता है। अब ध्यान देवे जिस प्रकार से पक्षी एक पिंजरे के अंदर है, ऐसे वो गर्भ के अंदर पड़ा हुआ जीव है वो बहुत दुखी होता है। उस समय में उसको अपने 100 जन्मों की बात याद आती है, 100 जन्मों की बात याद आती है, लंबा लंबा श्वास लेता है, और 7वें महीने में तो उसकी ये दशा होने लगती है, वो प्रार्थना करने लगता है भगवान से, नेकत्रास्ते सूति भाति, थोड़ा थोड़ा उस समय में हिलने लगता है, वो बाहर आने की चेष्टा करता है, लेकिन कभी वायु रोक देती है, कभी और किसी कारण से रुक जाता है। वो एक मलमूत्र के कीड़े के समान अंदर ही अंदर घूमता रहता है, और माता के पेट में मलमूत्र की दुर्गंधी से बहुत वो आकुल व्याकुल होता है। उस समय में नाथ माने ऋषि भीत है, देखो उस गर्भस्थ बालक को ऋषि नाम दिया है कि वो ऋषि उस समय में अपने पापों को भी याद करता है और भगवान को भी याद करता है। कितना पवित्र प्राणी है वो जो गर्भ के अंदर रह रहा है, बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति भी करता है। विकलया वाचा, बड़ा दुखी होकर के भगवान से जब प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, तो वो भगवान से कहता है कि हे महाराज, तस्योपसन्न मवितुम जगदिच्छयात नाना तनुर्भुवि चलत चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भयम् मे येने दृशि गतिरदर्श्य सतोनुरूपा। हे प्रभु, आप इस संसार में नाना प्रकार से अवतार लेकर लोगों को अपने चरणार बिंदु का दर्शन कराते हैं, ये आपके लिए बहुत उचित है, ऐसे आप दयालु परमात्मा के चरणों की मैं शरण स्वीकार करता हूं। देखो वो तो भगवान की भक्ति करता है गर्भ का बालक, और आप मुझे इस अवस्था में भेजे हैं, आहा, मेरे पापों को देखते हुए तो मुझे इसी अवस्था में ही रखना चाहिए था, मैं ऐसा हूं, अपने कर्मों से मैं भूत इंद्रियां माने शरीर इंद्रियां मन बुद्धि इनके अंदर ऐसा मैं अटक गया हूं, वास्तव में हूं तो इनसे अलग, लेकिन इनके साथ मैं ऐसा आबद्ध हो गया कि अपने स्वरूप को मैं नहीं पहचान सका, और आप ऐसे हैं कि मेरे अंदर वैसे निर्विकार रूप से मेरे पास मौजूद है, मेरे पास इंद्रियां भी हैं और आप भी हैं, मेरे पास विषय भी हैं और आप भी हैं, मैं कैसा हूं कि विषयों से तो प्रेम करता हूं और आपसे प्रेम करता हूं, कितना मैं निर्लज्ज हूं। 5 भूतों से बने हुए इस शरीर के अंदर आसक्त होकर मैं अपने आप को ये मैं हूं ऐसा मानकर आपको भूल गया। हे नाथ, आज आपकी स्मृति हो रही है, मैं आपके चरणों के अंदर शरण ले रहा हूं। मेरी स्मृति नष्ट हो गई थी और महाराज मैंने तो ऐसे ऐसे पाप किए हैं, उन पापों को आप भी जानते हैं और मैं भी यहां जान रहा हूं। अब महाराज आप कैसे मेरे से संतुष्ट होंगे? आप तो अपने किए हुए से ही संतुष्ट होंगे, मैं तो कोई करके आपको संतुष्ट कर नहीं सकता हूं। मेरे से तो पाप ही होंगे, पाप से आप कभी संतुष्ट हो नहीं सकते, फिर भी कृपा करते हैं तो आपका कृपा का स्वभाव है, इसी कारण से आप कृपा कर रहे हैं। महाराज मैं इस मलमूत्र से भरे हुए इस कुएं से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे जल्दी बाहर निकालिए नाथ। अब की बार यदि मैं बाहर आऊंगा तो पहले जैसी गलती नहीं करूंगा, बहुत गलतियां की हैं, अब आप मुझे बाहर निकालिए। नहीं 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 नाथ, मुझे बाहर मत निकालिए, गलत कह गया, न जाने कितनी बार मैं मनुष्य बना हूंगा, कितनी बार आपके सामने झूठी झूठी प्रतिज्ञा की होगी, लेकिन आपने उन मेरी झूठी प्रतिज्ञाओं पर भी ध्यान नहीं दिया और फिर आपने मुझे मनुष्य बनाया। यदि मैं बाहर आ गया तो शायद उसी माया के अंदर मैं अटक करके फिर वैसा पाप कर सकता हूं। यहां तो केवल मुझे कष्ट हो रहा है जीने में ही, लेकिन वहां तो मुझे कितना कष्ट होगा कोई पता नहीं है। नाथ न निर्जगमिषे, मैं बाहर निकलना नहीं चाहता हूं, अंदर ही पड़े रहने दो। परंतु हे नाथ, अब मैं आपके सामने बहुत सत्यता से कहता हूं, देखो ये आप पर हमारे सबके वचन है, हो अपने को तो पता नहीं है, त्रिकालदर्शी महात्माओं को, ऋषियों को, भगवान को पता है, इसलिए वो होश दिला रहे हैं कि भाई कहां हम थे और क्या कर रहे हैं। हे प्राणियों, तुमने ये प्रतिज्ञा की है, ये बात हम लोगों को सावधान करने के लिए कही जा रही है। उस समय में इस जीव ने प्रतिज्ञा की थी कि हे प्रभु, अब मैं बाहर निकल जाऊंगा तो मैं किसी प्रकार से ऐसा काम नहीं करूंगा कि जो मेरे पतन का कारण हो, उद्धरिष्य, मैं अपना उद्धार करूंगा। आप हमारे परम सुहृद हैं, आप मेरे स्वरूप हैं, इसलिए महाराज मैं अब आप ही के चरणों की शरण स्वीकार करूंगा, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं, जब कपिल भगवान कह रहे हैं, ऐसी अवस्था में भगवान इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि फिर एक प्रसूति वायु चलती है, उस प्रसूति वायु से वो बालक सहसा बाहर आता है। ध्यान देवें कि बाहर आते हैं तो वो स्मृति कहां चली गई, भागवत में सब बातों का उत्तर मिलेगा कि जो ही वो बाहर आता है थोड़ी देर के लिए उसका श्वास रुकता है तो जिस नाड़ी से उसको 100 जन्मों का ज्ञान होता था, बाहर आते आते एक बार थोड़ी देर के लिए जब श्वास रुकता है, अटकता है, उस समय में उस नाड़ी का ज्ञान लुप्त हो जाता है और हतः स्मृति, उसको वो चीज याद नहीं रहती, अतः वो बाहर आकर के रो रुयते, बार बार रोता है। क्यों रोते हो? कि गते ज्ञान है, उसका ज्ञान लुप्त हो गया इसलिए रोता है। अरे यदि वो ना किसी चीज के गुमने पर दुखी नहीं होता तो रोता क्यों? उसका रोना यही बता रहा है कि उसकी कोई चीज, असली चीज उसके हाथ से छूट गई। उस ज्ञान के अंदर मानसिक दृष्टि से वो बड़ा संतुष्ट था, अब वो ज्ञान उसके पास में नहीं रहा, वो रोता है। और विपरीतांग गतिंगत है, वो विपरीत अवस्था को प्राप्त हो गया, अब अज्ञान में आ गया। अब वो मलमूत्र के अंदर सना हुआ है, लोग नहलाते हैं, धुलाते हैं, देखो माँ इस संसार में कहां कहां जाओगे, कहां कहां कष्ट नहीं है, छोटा सा बालक है, मक्खी मच्छर उसको काटते रहते हैं, माता की गोद उसको मिलती है फिर भी वहां पर रोता रहता है। इस प्रकार से रोते 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 उसकी बाल्यावस्था निकल जाती है और जब उसकी जवानी आती है, भाई फिर तो कहना ही क्या है, वो देही अबुधय, वो देह के अंदर मूर्ख इतना अभिमान करता है, अहम ममे इति असत ग्राह है, ऐसा इस अहंता से ममता से अपने को जकड़ लेता है कि वो तरह तरह के पाप भी कर लेता है। उस समय में वो किसी को कुछ भी नहीं समझता, वह अपने इंद्रियों के वशीभूत रहता है और तरह तरह से वो पाप के अंदर ही लगा रहता है। सत्य उसके पास नहीं, पवित्रता उसके पास नहीं, समदम उसके पास नहीं, वो इन असत पुरुषों के संग में होकर अपने आप को भुला देता है। सच बात है मां, इस संसार में सबसे बड़ा कुसंग है स्त्री के लिए तो पुरुष का और पुरुष के लिए स्त्री का, इन दोनों का जो परस्पर में आकर्षणात्मक संबंध है, ये आकर्षणात्मक संबंध बहुत कष्ट देने वाला है। इसलिए संगम न कुर्यात सोचेशु योषित क्रीड़ा मृगेशु चे, इसलिए कभी भी कल्याणकामी पुरुष को और तो और काम पूर्वक इनके साथ संग नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नर नारायण के अलावा कौन ऐसा इस संसार में हुआ है जो आज जो इस संसार में स्त्री के द्वारा लुब्ध न हो जाए, इसलिए पहले से इनसे अलग रहे। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारुरुक्षुः यत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। इस काम को साक्षात नरक का द्वार कहा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः, सबसे पहला काम का नाम लिया है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। और यदि दूर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुने हो, यदि किसी पुरुष की स्त्री में आसक्ति हुई और स्त्री में आसक्ति करते करते मरा तो अगले जन्म में वो स्त्री होगा, और जो स्त्री पुरुष में आसक्त होकर के मरी तो अगले जन्म में वो पुरुष होगा। ये पुरुष और स्त्री का भेद जो दुनिया में देखते हैं वो कारण क्या है, मरते समय में ऐसा चिंतन हुआ, वो चिंतन के कारण से ऐसा होता है। स्त्रीत्वम स्त्री संगत है प्राप्त वित्तापत सगृह प्रदम, इस प्रकार से ये बात होती है। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है जिसका वर्णन बताई दिया है, उसके बाद मृत्यु आती है। और मां इस मृत्यु को तो लोगों ने बहुत बड़ा हवा मान लिया कि मृत्यु आ गई, बड़ा उन लोगों को दुख होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, मां मृत्यु है क्या जी, मृत्यु तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, मृत्यु तो भाई यही है कि यह विषयों को अब ले नहीं सकता है इसका नाम मृत्यु है, और विषयों को ले सकता है इसका नाम जीवन है। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य, जब ये द्रव्य की उपलब्धि करने की जगह प्राप्त कर लेवे तब इसका जन्म है, और जब ये द्रव्य की उपलब्धि न कर सके इसका नाम मृत्यु है। और इतनी बड़ी मृत्यु और जन्म की बड़ी बात है ही नहीं, इसलिए तस्मा न कार्य संत्रास है, मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मृत्यु कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, मृत्यु एक प्रकृति का एक प्रवाह के अंतर्गत अवस्थान्तर है और कुछ नहीं है। शरीर को ऐसा ही समझो कि माया के अंतर्गत है और इस माया के प्रवाह में चल रहा है, जैसे कोई मिट्टी का लड्डू बनावे और कोई मिट्टी का बहुत बड़ा टीला उससे गुड़कावे, वो उसके अंदर गुड़कता 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 जाकर के उसी में बिखर के पूरा होता है। ऐसे ही प्रकृति से बना हुआ ये एक मिट्टी का लौंदा प्रकृति के अंदर ही गुड़कता गुड़कता प्रकृति में लीन हो जाता है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं कि देखो माँ, देखो भाई, आप लोग ये कपिल भगवान का चरित्र सुनना है, ये बड़ा भारी पुण्य देने वाली बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक सुने। थोड़ा सा चरित्र और है कि घर गृहस्थ में रहने वाले पुरुष है वो सकाम भाव से तरह तरह से यज्ञ आदि करते हैं, पितृंश से और पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी तरह तरह से वे कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो जो सकाम भाव से कर्म करते हैं वे माता चंद्रलोक में जाते हैं और वहां जाकर के और फिर वापस अपने कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में आते हैं। इसलिए मनुष्य को सकाम भाव से कर्म नहीं करने चाहिए, किसी के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए, कामार्थ हेतवे कामना को तो बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। और ऐसे निष्काम जो महापुरुष होते हैं वो सूर्य द्वार के सूर्य मार्ग के द्वारा जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी के साथ वे भगवान में लीन हो जाते हैं। थोड़ी बहुत जिनकी वासना होती है वे लोग फिर वापस ब्रह्मा जी के साथ में, जब ये सारा पृथ्वी है, जल है, अनल है, अनिल है, वायु है, मन है, इंद्रियां हैं, इनसे भरा हुआ संसार पैदा होता है तो वे भी पैदा हो जाते हैं, और नहीं और ये नहीं होते तो ये जिनका जन्म नहीं होना होता वो नहीं पैदा होते। इसलिए भाई ब्रह्मा जी ने भी अपने सारे योगेश्वरों को सनत कुमारों को यही बात कही है कि भाई आप लोग कोई किसी प्रकार का भेद दृष्टि मत रखना, नहीं तो तुमको संसार में बार बार आना और जाना पड़ेगा। इसलिए जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है उनको नहीं करना चाहिए। करने वाले लोग संसार में बार बार जन्म लेते हैं, वे दक्षिण मार्ग से जाते हैं और श्मशानांत क्रियाकृत है, वो केवल कर्मकांड में लगे रहने वाले लोग बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। इसलिए माता अपने को और कोई किसी प्रकार के कर्म जंजाल में नहीं फंसना है, एक भगवान वासुदेव में भक्ति करनी है, अपनी चित्त वृत्तियों को उन्हें में ही लगाना है, चित्त को किसी प्रकार से प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में नए वैषम्यम विगृह्णाति, चित्त को कभी विषम नहीं करना चाहिए। देखो यह बड़ा दिव्याति दिव्य ज्ञान है माता, ये ज्ञान साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है और उस परमेश्वर को जानने के लिए ही हमको इंद्रियां मिली हैं, यही मन मिला है। दृश्यादि भी पृथक भावैर भगवान एक ईयते, किसी पदार्थ को जब हम ग्रहण करते हैं, कान से हम सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं और अंगुली से स्पर्श करके जो जानते हैं, वो एक दूध है। दूध को कान से, दूध के शब्द को तो कान से सुनते हैं, रूप को हम आंख से देखते हैं और उसको खट्टा है कि मीठा है, कैसा है इसको हम जीभ से चखते हैं, गर्म है कि ठंडा है इसको हम अंगुली से देखते हैं। इसी प्रकार से जो कुछ देखने में सुनने में आता है एकमात्र परमात्मा ही है, और संसार से असंग होकर हम परमात्मा की तरफ चलें, मेरे ज्ञान का यही एकमात्र सार है। ये हमने आपको ज्ञान बता दिया है, चाहे ज्ञान योग हो और चाहे भक्ति योग हो, द्वयोरपि एक एव अर्थ है, दोनों का एक ही प्रयोजन है कि मेरी प्राप्ति हो जाए। भगवत शब्द लक्षण है, ज्ञान योग से भी भगवान मिलते हैं, भक्ति योग से भी भगवान मिलते हैं। इसलिए ये मैंने आपको जो ज्ञान बताया है, ये ज्ञान कभी किसी दुष्ट पुरुष को मत देना, दुर्विनीत को मत देना और स्तब्ध को मत देना, जो हमारे इस ज्ञान में दोष रखने वाला है उनको मत देना। ये किसी श्रद्धालु पुरुष की चीज है, हर किसी को देने की चीज नहीं है। इसलिए माँ, जो मुझे कहना था वो मैंने आपको सारी बात कह दी है। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, कपिल के वचनों को सुनकर के माता बहुत आनंदित हुई, विस्त्रस्त मोह पटला तम अभी प्रणम्य, उसका सारा अज्ञान दूर हो गया, संसार का एक बहुत सुंदर चित्रण उसके दिमाग में आया। अब उसने हाथ जोड़ करके कहा कि अब मैं आपको बेटे रूप से कहूं कि भगवान रूप से कहूं, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत आश्चर्य में डूब रही हूं कि कैसे तुम मेरे बेटा हुए हो, तुम्हारे उदर में सारा संसार समाया हुआ और वो तुम मेरे उदर में आकर समाहित तो हो गए, कैसे विचित्र बेटा हो। जिस समय में सारा संसार तुम में लीन हो जाता है, उस समय में तुम एक अकेले वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर पड़े पड़े छोटे से बालक होकर अपना अंगूठा चूसते हो। क्यों चूसते हैं भगवान? कि भाई सबके सामने चूसेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अकेले में चूसते हैं, अरे भाई आता है वो मेरे पैरों में ही पड़ता है, कोई भी ऋषि हो, मुनि हो, महात्मा हो, हमारे पैरों में पड़ता है। एक बात क्या है, तो वो अपने पैर को भगवान चूसते हैं, अर्थात भगवान के चरण जब भगवान को ही प्यारे लगते हैं तो अपने को तो लगना ही चाहिए। यथा अवतारा तव सुकरादय, कैसे कैसे आप अवतार लेते हैं, सुवर भी आप बन जाए और हयग्रीव भी आप बन जाए, क्या क्या आप रूप बनाने वाले हैं। हे महाराज, मैं तो एक बात जानती हूं कि इतना रूप बना करके आप करना क्या चाहते हैं, सारे जगत में आप अपने नाम का विस्तार करना चाहते हैं। आपके नाम को कोई महान पतित से पतित व्यक्ति भी अपने जीव से ले लेता है तो महाराज वो भी बड़ा भारी पवित्र हो जाता है। हम तो ये जानते हैं कि सब तपस्याओं का सार, सब ज्ञानों का सार, सब भक्ति का सार केवल आपका नाम है, इसलिए मैं तो नाम लेकर के आपको प्रणाम कर देती हूँ। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि माता की बात सुनकर के कपिल ने कहा कि अच्छा माता जी, आपने तो अब हमसे ज्ञान ले लिया, इस ज्ञान को अब आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिए, ऋषि मुनियों के बीच में आप बात कीजिए। ये नमाम अभवम याया, और ऐसा विलक्षण ज्ञान है कि अब इससे संसार का अभाव ही होगा, और अब आप मुझे अनुमति दीजिए इस ज्ञान को मैं और लोगों को भी सुनाऊं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं माता से अनुमति लेकर वे वहां से कपिल भगवान रवाना हो गए। कपिल भगवान के पधारने के बाद अब अपने बेटे भी हैं और अपने आराध्य भी हैं, इनके बिछुड़ने से एक बार तो देवहूति के मन में विचार आया, लेकिन फिर कहा कि यहो इसी शोक की निवृत्ति के लिए तो ज्ञान दिया है, अब वो अपने आश्रम में आई। अब ध्यान से सुने ज्ञान का प्रभाव क्या पड़ता है, इतना दिव्य वो विमान बनाया जिसमें तरह तरह की चीजें थी, विचित्र विचित्र पलंग थे, शैयाएं थी और रत्न प्रदीपा जिसमें तरह तरह के रत्न तो प्रकाश में काम में लिए जाते थे, बैटरी के रूप में काम लिए जाते थे, उन सब से उनको वैराग्य हो गया। अरे घास फूस की एक छोटी सी झोंपड़ी, उसके अंदर देवहूति जी रहने लगी, कपिल भगवान का ध्यान करने लगी, भगवान का ध्यान करने लगी, और जो भगवान का ध्यान का प्रसंग कपिल भगवान ने बताया उसी का वो ध्यान करती रही, और उसी ध्यान में स्थित होकर के वह परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर अपने अनुभूति के द्वारा तिरोभूत माया गुण विशेषणम, अपने माया के जितने गुण हैं, माया का जितना कार्य, उन सब से अपने मन को हटा लिया और निवृत्त जीवापत्तित्वात् क्षीण क्लेशात्म निवृत्ति, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने के बाद उसका जीव भाव भी नष्ट हो गया और उसकी समाधि कोई विच्छिन्न होने वाली समाधि नहीं थी, टूटने वाली समाधि नहीं थी, नित्यारूढ़ समाधित्वात, उसकी समाधि ऐसी विचित्र लगी कि वो नित्य उस समाधि में रहती थी। ये ज्ञान समाधि होती है, नित्य समाधि होती है। प्राणायाम पूर्वक समाधि होती है, ये नित्य समाधि नहीं होती। भागवत ने ऐसी समाधि का ही आदर किया है कि जिस ज्ञान के अंदर स्थित होकर ये जीव नित्य समाधि को प्राप्त हो जाए। अब उनके शरीर के ऊपर मेले कुचेले कपड़े पड़े हैं और शरीर में भी मैल लगा हुआ है, तो भी उनके कोई अंतर नहीं है। कोई किसी प्रकार के उनके अच्छे कपड़े पहनने की या शरीर को संवारने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से शरीर को परकीय वस्तु मानी और फिर वे भगवान के भजन में प्रेम में ही डूबी रही। इस प्रकार का ये कपिल आख्यान है। भगवान कपिल फिर सिद्ध देश में चले गए, ऋषियों के बीच में गए, तरह तरह से उनके बीच में चर्चाएं चली। सिद्ध चारणों के द्वारा सेवित होकर सारे संसार को उन्होंने ज्ञान दिया और यही ज्ञान सांख्य शास्त्र के रूप से प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार से हे विदुर जी, आपने जो मुझे ज्ञान पूछा था कपिल का और देवहूति का संवाद, वो मैंने बता दिया है। जो इस कपिल आख्यान को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, हमारी गारंटी है कि मरते समय में उनको भगवान की स्मृति रहेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान। इस प्रकार से मैत्रेय जी महाराज ने कपिल उपाख्यान इतना कहकर के पूर्ण किया।
सृष्टि निरूपण करने वाला तीसरा स्कंद अभी कपिल उपाख्यान के साथ संपन्न हुआ है। अब चौथा स्कंद प्रारंभ किया जा रहा है, तो तीसरे स्कंद के साथ इसका क्या संबंध है इस पर विचार करते हैं, तो ये बात सिद्ध हुई है कि जिस सृष्टि में हम लोग आए हैं उसमें मनुष्य के लिए चार पुरुषार्थ करने हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए सृष्टि बनाई, उसमें भी मोक्ष है वो आत्यंतिक प्रयोजन है, अंतिम प्रयोजन मोक्ष ही है। तो सृष्टि में ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, ये पुरुषार्थ चतुष्टय मनुष्य के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो मनुष्य उसमें एक विशेष सृष्टि पैदा करता है। माने धर्म करेगा तो धर्म की सृष्टि होगी, जीव को उपार्जन के लिए कार्य करेगा वो अर्थ की सृष्टि होगी। तो वो कोई बाहर से नई सृष्टि नहीं होती है, वह उसके संकल्प की सृष्टि होती है। ऐसे ही निर्वाह के लिए कार्य करेगा तो किसी प्रकार की इच्छा भी करेगा तो वो काम की सृष्टि है, और अंत में इन सब का प्रयोजन मोक्ष से सिद्ध होता है तो मोक्ष की सृष्टि है। इसको विसर्ग के नाम से कहा, विशिष्ट सर्ग है वो विसर्ग है, सर्ग में कुछ विशेषता ले आवे, इसलिए इसका नाम विसर्ग रखा चौथे स्कंद का। तो चौथे स्कंद के चार भाग हैं। प्रारंभ के सात अध्याय में धर्म का विवेचन है और उसके बाद पांच अध्यायों में काम का विवेचन है और आगे 11 अध्यायों में अर्थ का विवेचन है और अंतिम 8 अध्यायों में मोक्ष का विवेचन है। मोक्ष के दो मार्ग हैं, एक तो सगुण मार्ग है, एक निर्गुण उपासना का मार्ग, एक सगुण उपासना का मार्ग। तो चार चार अध्याय उन दोनों के हैं। इस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष का ये निरूपण करने वाला चौथा स्कंद है। अब प्रारंभ में 7 अध्यायों पर धर्म का विचार किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, भागवत है ये ध्यान देकर सुनने की है, क्योंकि केवल कथा भाग तो है नहीं, परंतु भागवत में कौन सी कथा किस आधार को लेकर कही गई है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसी से ही भागवत का जो परम रहस्य है वो समझ में आता है। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि मैं बता चुका हूं कि मनु की 3 कन्याएं थी, यह भी बता चुका हूं कि आकुति रुचि को दी है, देवहूति कर्दम को दी है, प्रसूति दक्ष को दी है। अब यद्यपि प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके 2 बेटा जरूर थे, फिर भी शत्रुपा ने रुचि नाम के प्रजापति को आकुति कन्या देते हुए कहा कि देखो आपका जो लड़का होगा वो लड़का हम गोद लेंगे। कि अच्छी बात है, तो उनसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए, अर्थात यज्ञ और दक्षिणा के रूप में भगवान विष्णु और लक्ष्मी ही अवतार लिए। तो मनु ने उनको गोद ले लिया, विष्णु को अर्थात यज्ञ को गोद ले लिया, और दक्षिणा रुचि के पास ही रह गई। और फिर दक्षिणा और रुचि दो अलग अलग यज्ञ अलग अलग रह नहीं सकते थे, लक्ष्मी और विष्णु अलग नहीं रह सकते हैं, अतः वे दोनों साथ में रहने लगे और इससे देवताओं की बड़ी रक्षा हुई। देवहूति के जो कन्याएं थी उनका विवाह कर दिया गया और उससे सारा संसार भरा हुआ था। कहते हैं उसी में ही अनसुईया का विवाह दत्तात्रेय जी के साथ, हाँ कहते हैं उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, जिससे उनके तीन लड़के पैदा हुए। एक तो चंद्रमा पैदा हुए, एक दुर्वासा पैदा हुए और एक दत्तात्रेय जी पैदा हुए। तीन देवता, तीन के अंश से तीन हुए, तीन की कृपा से तीन हुए। अब देखो पति तो है अत्रि, माने जो त्रिगुण से रहित है, और बेटा हुए उनके तीन। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा पैदा हुआ, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय पैदा हुए, शंकर भगवान के अंश से उनकी कृपा से वे दुर्वासा पैदा हुए। कहते महाराज ऐसा क्यों हुआ कि जब अनुसुईया के साथ अत्रि का विवाह हो गया, वे पर्वत पर जाकर भगवान का भजन करने लगे और कहने लगे हे जगदीश्वर आप हमें दर्शन दीजिए, हे जगदीश्वर हम आपके साथ प्रेम करें। ऐसा जब उनसे प्रार्थना की गई तो एक तो हंस पर बैठ के आ गए, एक गरुड़ पर बैठ करके आ गए, एक बैल पर बैठ करके आ गए। तीनों ने कहा भाई तुमने जगदीश्वर के नाम से बुलाया तो हम तीनों ही आ गए हैं, तो हमारे तीनों के अंश से, हम तीनों की कृपा से तुम्हारे तीन बेटा होंगे। इस प्रकार से अत्रि के तीन बेटा हुए। इसी प्रकार के श्रद्धा का अंगिरा के साथ विवाह हुआ, पुलस्त्य का विवाह पुलस्त्यो अजनयत पत्न्याम अगस्त्यं च हविर्भुवि हविर्भु के साथ हुआ। तो पुलह का विवाह गति के साथ हुआ, क्रतु का क्रिया के साथ हुआ, फिर इनसे सारा संसार भरा हुआ था। अब बताते हैं कि प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ तो उससे 16 कन्याएं हुई, लड़का नहीं हुआ दक्ष के, 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का विवाह अग्नि के साथ हुआ, एक का विवाह पितरों के साथ हुआ और एक का विवाह शंकर के साथ हुआ। अब देखो धर्म की जो 13 पत्नियां हैं उनका नाम सुन लीजिए, धर्म बढ़ेगा इसलिए। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और मूर्ति, ये 13 धर्म की पत्नियां थी। अब धर्म की सृष्टि कैसी होती है देखो, धर्म का श्रद्धा के साथ संबंध हुआ तो शुभ पैदा हुआ, मैत्री के साथ संबंध हुआ तो प्रसाद पैदा हुआ, दया से अभय पैदा हुआ, शांति से सुख पैदा हुआ, तुष्टि से मुद पैदा हुआ और पुष्टि से स्मय पैदा हुआ, क्रिया से योग पैदा हुआ, उन्नति से दर्प पैदा हुआ, बुद्धि से अर्थ पैदा हुआ, स्मृति से मेधा पैदा हुआ और तितिक्षा से क्षेम पैदा हुआ और ऋषि से प्रश्रय वाने विनय पैदा हुआ और मूर्ति से नर नारायण पैदा हुए। लोग कहते हैं मूर्ति को क्यों मानते रहे, मूर्ति में से ही तो भगवान निकले, मूर्ति में से ही नर नारायण निकले, इसलिए मूर्ति की पूजा की जाती है, अर्थात मूर्ति में से भगवान का आविर्भाव हुआ है, नर नारायण का आविर्भाव हुआ है। तो नर नारायण के आविर्भाव होने पर सब दिशाओं में प्रसन्नता छा गई, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की, नर नारायण का अवतार हुआ। देवताओं ने कहा महाराज जैसे घटाकाश में और मठाकाश में अंतर नहीं है, इसी प्रकार से जीव में और ब्रह्म में अंतर नहीं है, ये बात समझाने के लिए आप अवतार लिए हैं। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा था, उससे तीन अग्नियां पैदा हुई, पावक, पवमान और शुचि। इन तीनों के फिर 45 अग्नियां और पैदा हुई, तो 45 और 3 48 और एक अग्नि स्वयं 49, 49 प्रकार की अग्नियां हैं, यज्ञ आदि में काम आती हैं। पितर हैं चार, अग्निस्वात, वर्णिषद, सौम्य और आज्यप, ये चार पितर हैं। इनके स्वधा नाम की जो दक्ष की कन्या थी उसके साथ विवाह हुआ, उससे दो कन्याएं हुई और दोनों ही बड़ी ब्रह्मवादिन्यौ, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थी। शंकर की पत्नी का नाम सती था और हे विदुर, जवानी में ही सती ने भगवान शंकर का अपराध अपने पिता के यहां देखा तो अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर लिया। विदुर जी कहते हैं, महाराज ठहरिए, भगवान शंकर बड़े विलक्षण हैं और बेटी के साथ तो बाप का सदा प्रेम रहता ही है, बहुत कृपा करता है बाप बेटी के ऊपर, ऐसा क्या हो गया कि जवाई में और ससुरे में आपस में कोई कलह पैदा हो गया जिस कारण से सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा, यह विस्तार के साथ समझाओ। ध्यान से सुनना, बहुत विचित्र बातें आएंगी इन कथाओं में। ये धर्म का उपाख्यान चल रहा है, हम लोग धर्म को क्या रूप मानते हैं, भगवान इस धर्म में हमें क्या देखना चाहते हैं, इस दृष्टि से आप सावधानी से सुने। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है कि प्रजापतियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि उसमें इकट्ठे हुए। उस समय में ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति के रूप में, समस्त प्रजापतियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर रखा था। तो वो प्रजापति दक्ष है, वो अपने सभा के बीच में देरी से आए। देरी से इसलिए आए कि जाने पर हमको सबका उत्थान अभ्युत्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो सम्मान की इच्छा से दक्ष आए। जिस दक्ष के मन में इतना अभिमान है और सम्मान है, अब बताओ उनके द्वारा कोई धर्म होगा भगवान स्वीकार करेंगे? तो दक्ष उस सभा के अंदर आए तो ब्रह्मा जी तो बैठे रहे, शंकर जी भी बैठे रहे और सब के सब खड़े हो गए। खड़े हुए, उनको ऊंचे आसन पर बैठाया। तो देखो, जिसके सम्मान की भूख होती है वो थोड़े से अपमान से दुखी हो जाता है। इतने लोगों का सम्मान मिला उससे तो वो राजी हुआ नहीं, प्रसन्न हुआ नहीं, और शंकर भगवान नहीं उठे तो दक्ष के हृदय में चोट पहुंच गई। अब दक्ष ने भरी सभा में शंकर का अपमान करते हुए कहा कि देखो, ये तो हमारे पिता हैं, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बहुत सुंदर पाली पोसी कन्या जिसको दी हूं, मेरे लिए जो पुत्र के समान है, शिष्य के समान है, वो शंकर अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ है, तो आज इसने महान अपराध किया है, धर्म की मर्यादा का लोप किया है, इसलिए मैं इस भरी सभा के अंदर इस अपमान के बदले में इनको श्राप देना चाहता हूं। ऐसा कहकर के अपने हाथ में जल लिया, लोगों ने आकर हाथ पकड़ा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? क्या नहीं, हमारा बड़ा भारी अपमान हो गया, हम नहीं सह सकते। बहुत लोगों ने मना किया, दूसरे इंद्रादि देवताओं ने भी मना किया, लेकिन दक्ष माने नहीं और सबके बीच में श्राप देते हुए कहा कि आज से मेरा श्राप है कि शंकर को यज्ञ में कभी हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा करके जल छोड़ दिया। जल छोड़ देने के बाद में फिर नंदीश्वर थे, वे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी को जिसने श्राप दिया है वो दक्ष, हमारे वचनों को ध्यान से सुन लेवे। आप लोग कर्मकांड के अंदर ज्यादा आसक्त हो तो हम आपको श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हें कभी भी तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तत्वतो विमुखो भवेत, और आप लोग अमुक कर्म करेंगे अमुक फल मिलेगा, और अमुक कर्म करोगे ये फल मिलेगा। वेदवाद विपन्न धी, वेदवाद के अंदर ही आपकी बुद्धि धसी रहेगी, और गृहेशु कूट धर्मेशु, केवल घर गृहस्थ के छल कपट से भरे हुए इस व्यवहार के अंदर ही तुम लोग उलझे रहोगे। अविद्या को ही आपने बुद्धि मान, विद्या मान लिया है, कर्म मार्ग को ही आपने योग मार्ग मान लिया है, तो हमारा श्राप है कि तुम संसार के आवागमन से कभी तुम छूट नहीं सकोगे। अब इधर ब्राह्मण भृगु खड़े हो गए कि अच्छा, हमारे यजमान को तुम श्राप देते हो, हम तुमको श्राप देते हैं कि जाओ, जितने शंकर के पक्षपाती होंगे सब पाखंडी होंगे, सब आचार विचार से शून्य होंगे। विसंतु शिव दीक्षायाम यत्र देवम सुरासवम, आप लोग स्नान आदि की मर्यादा से भी रहित रहोगे,
पाखंडी ने शस्त्रास्त्र परिपंथी ने शास्त्रों का उच्छेदन कर देने वाले बनोगे। इस प्रकार से उनको शाप दिया। ऐसे शाप एक दूसरे को दे करके और फिर उस सभा में से वे सब बाहर निकल गए। बाहर जाने के बाद में सब लोगों के मन में बड़ी खिन्नता हुई कि आए थे बड़े प्रेम से मिलने के लिए, सृष्टि का विचार करने के लिए, और इसके अंदर ये लड़ाई झगड़ा हो गया। सबका मन बड़ा खिन्न हो गया। गंगा यमुना नदी के किनारे आए, आवृत स्नान किया, अपने अपने धाम में चले गए। इधर दक्ष के मन में वहां तो था घमंड और अब बैठ गया बैर। तो दक्ष ने कहा कि अब शंकर का अपमान कैसे किया जाए। तब उसने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें सब देवताओं को सबको बुलाया। सब लोग जाने लगे उस यज्ञ के अंदर। तो कैलाश पर्वत के ऊपर से बहुत से विमान जाने लगे। तो सती ने उन सब से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या आपको पता नहीं है हम आप ही की जन्मभूमि में जा रही हैं, और हम लोग वहां बहुत बड़ा भारी यज्ञ है, उस यज्ञ का दर्शन करेंगे, यज्ञ में हमको बुलाया है। तो सती ने देखा कि पितुर यज्ञ महोत्सव, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का इतना बड़ा उत्सव और हमको नहीं बुलाया। सती को पता नहीं क्या बात हुई। इधर भगवान शंकर के पास में आकर सती ने प्रार्थना की कि हे प्राण प्रियतम, आपके ससुर जी के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी वहां चली जाऊं, आप भी चले, मैं वहां अपने अपने बहनों से मिलूंगी, बहनोइयों से मिलूंगी और अपने माँ से मिलूंगी, सबसे मिलूंगी। बहुत दिनों से मेरे मन में उत्कंठा है कि आप कभी मेरे ससुर साहब, आप अपने ससुर साहब की कभी चर्चा नहीं करते, मेरे पिताजी के बारे में आप कुछ बोलते भी नहीं है। तो द्रक्षे चिरोत्कंठ मना महर्षिभिर, बहुत चिर का बहुत लंबे समय से मेरी इच्छा थी पिताजी के वहां जाने की। तो हे शिव, हे प्राण प्रीतम, आप आज्ञा दीजिए, मैं ज्यादा कोई बात जानती नहीं हूं क्योंकि मैं स्त्री हूं, लेकिन फिर भी इतना तो जानती हूं कि अपने पिता के घर में हमको बिना बुलाए भी जाना चाहिए, अपने पति के घर में भी बिना बुलाए जाना चाहिए, और जो हमारे गुरुजन है, पूज्यजन है, उनके घर में भी बिना निमंत्रण जाना चाहिए, इतना तो मुझे मालूम ही है। इसलिए आप ऐसी कृपा करो, दया करो कि हम लोग भी वहां पिता के वहां जावें। शंकर भगवान इस बात को सुनकर के हंसते हुए कहने लगे कि देखो सती, तुम बात बिल्कुल ठीक कहती हो कि बिना बुलाए अपने गुरुजनों के घर जा सकते हैं और माता पिता के घर जा सकते हैं, गुरुजनों के घर जा सकते हैं, परंतु याद रखो कि नहीं बुलाने की इच्छा से ही जिन्होंने नहीं बुलाया है उनके घर को तो याद भी नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति विद्या में, तपस्या में, धन में, शरीर में, अवस्था में, पद में घमंड रखने वाले होते हैं, वे लोग अपने घर में आत्मीय लोगों के आने पर भी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखा करते हैं, और उस समय में उनका देखना और बोलना इतना चुभता है सती, इतने बाण नहीं चुभा करते हैं, कभी कभी बाणी इतनी चुभती है कलेजे में कि बाण भी नहीं चुभता। बाण का तो कोई न कोई उपाय किया जा सकता है, पर बाणी का कोई उपाय नहीं किया जा सकता। इसलिए भाई वहां जाना उपयुक्त नहीं है। पापच्यमानी हृदय तुरेन्द्रिय समृद्धि भी पुरुष बुद्धि साक्षीणाम, जीव की बुद्धियों का साक्षी जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उस परमात्म तत्व का भी ज्ञान कर देने वाले महापुरुषों का जहां अपमान होता हो, ऐसे स्थल को कभी याद नहीं करना चाहिए। अब आप यही बात कहोगे कि आपके उनके बीच में बात क्या हुई, तो हम एक बार सभा में बैठे हुए थे और तुम्हारे पिताजी आए, हम खड़े नहीं हुए, इस बात से उन्होंने अपना अपमान मान लिया और हमको नहीं बुलाया, तो आप खड़े क्यों नहीं हुए जी? तो हम इसलिए खड़े नहीं हुए, ध्यान देवें, ये सम्मान जिनको मिलता है उनके लिए बहुत सावधानी की बात। शंकर भगवान कहते हैं कि प्राज्ञ ही परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देह मानिने, ये सम्मान करना, उठना, प्रणाम करना, नमस्कार करना किसको होता है? उसके अंदर रहने वाले परमात्मा को होता है, और वो देहाभिमानी मानता कि मेरे को प्रणाम करते हैं, ये ज्यादा मैं करते हैं, उनको हम प्रणाम नहीं करते हैं, इसलिए हम वहां पर शुद्ध भाव से बैठे रहे। हमारा किया हुआ अभ्युत्थान दक्ष के लिए और ज्यादा अभिमान का कारण बनेगा, तो हम मनी मन से वहां पर परमात्मा में स्थित हो गए, वासुदेव में हम स्थित हो गए। सती, वासुदेव का अर्थ केवल वसुदेव का लड़का ही नहीं है। वासुदेव किसे बोलते हैं? कि जो शुद्ध अंतःकरण होता है उसका नाम वसुदेव है, और शुद्ध अंतःकरण में जो चैतन्य तत्व है वो वासुदेव कहलाता है। मैं समाधि में उसी में स्थित था, तो दक्ष के सम्मान से भी बड़ा सम्मान भगवान का मैंने कर दिया था, फिर भी दक्ष मुझसे नाराज हुआ है। अतः ऐसे मिथ्या नाराज होने वाले अपने ससुर के घर को हमको याद भी नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। और हम तो कहते हैं कि दक्षो मम द्विट, यदि वो मेरे से द्वेष करता है तो सती तुमसे पहले द्वेष हो गया है, इसलिए मेरी यही सलाह है तुमको जाना नहीं चाहिए, और इसके बावजूद भी यदि तुम चली जाओगी तो तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास करना होगा कि तुम्हें वहां पर पराभव ही देखना पड़ेगा, बेइज्जती देखनी पड़ेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शायद बहुत जल्दी अपना शरीर छोड़ दोगी। सद्य है मरना ये कल्पते, बहुत जल्दी तुम मर भी सकती हो। लेकिन जिसके मन में आग्रह रहता है वो सही बात को कब स्वीकार करे? शंकर भगवान ने स्पष्ट सब बात साफ बता दी, लेकिन सती जी तो एकदम आग बबूला हो गई, बहुत नाराज हो गई। देखो ये ज्यादा तो हमको पता नहीं है, पुस्तक में लिखी हुई बातें हैं कि ये पति और पत्नी जब इन दोनों का प्रणय कलह होता है, प्रेम का कलह होता है, उस समय में पत्नी जब विशेष क्रोध, बहुत ही ज्यादा क्रोध करती है, तब पति को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमसे नाराज है, बल्कि इसमें विशेष प्रेम है, प्रेम के कारण से वो क्रोध करती है। तो सती जी को शंकर भगवान के वचनों पर और क्रोध आया, क्रोध आया तो अब वो क्रोध से उनका जो है शरीर कांपने लग गया, होठ उनके फड़फड़ाने लग गए। अब कभी तो वो गुफा के अंदर जावे, कभी बाहर जावे, और मालूम यह है कि क्रोध आने पर क्या होता है, चिमटा कहीं पटक देते हैं, बेलन कहीं पटक देते हैं, बर्तन कहीं पटक देते हैं। ऐसे वो सती जी इधर उधर सामान को पटकने लगी, तो शंकर भगवान ने कहा कि भाई बात क्या है, इतने नाराज क्यों हो कि मैं तो जाए बिना नहीं रहूंगी, नहीं जाओ तो ये पधारो, लंबा चौड़ा रास्ता, आराम से पधारो। सती जी को कह दिया आप जाओ। अपने गणों को बुला करके कहा देखो इसकी रक्षा करना, ये भोलेपन में जा रही है और कहीं इसके सामने विपत्ति न आ जाए, इसका पूरा ध्यान रखना। अपने बैल पर बैठा दिया, खेलने कूदने की सामग्री दे दी और अपने गणों को साथ में कर दिया। सती जी वहां से रवाना हो गई, और रवाना होकर के अपने पिता के घर पर पहुंची। अब वहां पर ब्राह्मण देवता जोर जोर से यज्ञ का जो मंत्रोच्चारण वो कर रहे थे। आ ब्रह्म घोषो जित यज्ञ वैशम विप्रसि जुष्टम विबुधिष्ट सर्वश। देवता लोग भी अपना अपना भाग लेने के लिए वहां पर बैठे थे, क्योंकि सब दक्ष प्रजापति से भयभीत थे। देवता अपनी अपनी जगह बैठे, ब्राह्मण जोर जोर से मंत्र बोल रहे हैं, कहीं पर मिट्टी के पात्र हैं तो कहीं सोने के पात्र हैं तो कहीं दूसरे पात्र हैं, कहीं पर जो जो वस्तुएं यज्ञ की चाहिए, पात्र चाहिए, सब वहां पर उपस्थित है। ऐसा वो मंडप था जिसके अंदर सब विराजमान थे, उसके एक रास्ते से स्वयं सती जी उसमें प्रवेश की। जब वहां प्रवेश की तो एक तो माँ बड़े प्रेम से मिली और बहनें बड़े प्रेम से मिली, और पिता ने और किसी ने भी उसका आदर नहीं किया। वह थोड़ी और आगे बढ़कर देखती है कि इंद्र यहाँ पर बैठे हैं, अमुक बैठे हैं, अश्विनी कुमार बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, सबकी अलग अलग वेदियां सब बैठे हुए हैं। सबसे पूछा कि हमारे प्राणनाथ का इस यज्ञ में कहाँ स्थान है? कह कि उनको नहीं स्थान देने के लिए ही, अर्थात अपने शाप को सत्य करने के लिए दक्ष ने यहाँ उनको निमंत्रण नहीं दिया और उनका स्थान भी नहीं रखा। अच्छा, तो अरुरुद्ध भागम तमवेक्ष चाध्वरम, जब रुद्र का भाग वाणी देखा तो अब सती के मन में बड़ा क्रोध आया और भरी सभा के अंदर ललकारते हुए कहा, ब्राह्मणों एक बार आप अपना मंत्र तो रोको और मेरा मंत्र सुन लो, मैं अब क्या कहना चाहती हूं। पिताजी, इस संसार में शंकर से द्वेष करने वाले लोगों में आपका नाम सर्वोपरि है, इस बात से हमारे मन में महान कष्ट हो रहा है। जिसके मन में कभी बैर है ही नहीं, उसके प्रति आप बैर करके बड़ा भारी अनर्थ किए हैं। पिताजी, श्रेष्ठ पुरुषों का ये काम होता है कि दूसरों के दोषों में भी वो गुण देखा करते हैं, लेकिन आप जैसे ऐसे मलिन बुद्धि वाले हैं कि दोष दूसरों के गुणों में भी आपने दोष देखना चालू कर दिया। ये आप जैसे पुरुषों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने महापुरुषों की निंदा करते करते अपने हृदय को महान मलिन बना लिया है। जिनका ये दो नाम है शिव, दो अक्षर है, ये दो अक्षर जिनके मुख से निकल जाता है उसके जन्मांतर के पाप राशि समाप्त हो जाती है। ऐसे शिव के साथ आप द्वेष करते, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये कहोगे कि तुम्हारा पति तो मुंडों की माला पहनता है, श्मशान में रहता है और वो श्मशान में मुर्दों की राख लगाता है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि उस वो राख जिस समय में शंकर भगवान धोते हैं तो क्यों ब्रह्मा आकर उस राख को अपने सिर के ऊपर लगाते हैं, क्यों उनकी माला को शंकर शिव जी आकर ब्रह्मा जी आकर के धारण करते हैं, बड़े बड़े लोकपति आकर उनके चरणों में आकर क्यों गिरते हैं, मालूम है आपको? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कर्णौ पिधाय निर्यात यदिकल्पे ईशे, यदि सभा के अंदर किसी श्रेष्ठ पुरुष का अपमान होता हो तो उस सभा में बोलने वाले की जीभ निकाल लेनी चाहिए सामर्थ्यवान हो तो, और यदि सामर्थ्य नहीं हो तो कान बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। मुझे बहुत बड़ा दुख है, मेरा दुर्भाग्य है कि आपकी मैं बेटी कहलाती हूँ, मैं दाक्षायणी कहलाती हूँ, मैं इस शरीर को किसी हालत में धारण नहीं करूंगी, ये शरीर आपके सामने छोड़ देती हूँ। आप ये कहोगे कि तुम्हारा पति वेदानुयायी नहीं है, वेद मार्गी नहीं है। अरे इस रास्ते से चलो और इस रास्ते से मत चलो, ये बात किसके लिए कही जाती है? जो सूरदास होता है और जिसकी आंखें काम करती हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने मार्ग को खुद तय करता है और खुद चला जाता है। तो ये वेद है तुम्हारे जैसे अंधे आदमियों के लिए, जिनके लिए विधि और निषेध दोनों चीज लागू होती है, लेकिन जो अपने स्वरूप में रमण करने वाले शंकर हैं उनके लिए वेद मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं, प्रवृत्ति मार्ग की आवश्यकता नहीं, न उनके निवृत्ति मार्ग की आवश्यकता है। आप लोगों ने यज्ञ के धुएं से अपने हृदय को काला बना रखा है, अतः आप लोगों का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहती और अपने शरीर को भी नहीं रखना चाहती। इतना कहकर के वो चुप हो गई, सब थर थर कांपने लग गए और सभा के उस यज्ञ के बीच में जाकर बैठ गई, अपने स्वरूप में वो स्थित हो गई। योग की अग्नि से उसने धू धू करके अपने शरीर में से आग पैदा कर ली और वहीं पर वो जल गई। जो ही वो जली, अब सब देवता कांपे कि अब क्या होगा, शंकर को जब मालूम चलेगा तो क्या होगा। वो एक काना फूसी होने लगी, केहू ने जाकर फटकारा दक्ष को कि अरे दक्ष तू अपने बेटी को प्रसन्न नहीं कर सका, जाकर के बेटी से कहना चाहता बेटी तेरा दुख क्या है, यदि मैं तुम्हारे पति को यहां नहीं बुलाया हूं तो ले अभी मैं बुला लेता हूं, अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए पिता क्या क्या नहीं कर सकता है, और तुम ऐसे निकले निष्ठुर कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी जल रही है तुम रोक भी नहीं सके। ऐसे दक्ष की बड़ी भारी अपकीर्ति करने लगे। इधर शंकर के जो पार्षद आए थे उन्होंने पत्थर फेंक करके और जो है शस्त्र अस्त्र फेंक फेंक करके उन लोगों को मारना चालू किया, तो भृगु जी महाराज ने उस समय में आहुतियां दी। आहुति देने से उसमें यज्ञ में से ऐसे ऐसे प्रमथ पैदा हुए कि जिससे ऋभु नाम के ये देवता पैदा हुए, जिससे शंकर भगवान के प्रमथ आदि सब वहां से भग गए, भग करके और वे अपने अपने स्थान पर चले गए। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान अकेले हैं, वीणा पाणी नारद नारायण नारायण शिव शिव करते हुए वहां आए। कहा महाराज स्वागत है, पधारिए। क्या स्वागत है शंकर जी, कुछ बातें हम कहना भी चाहते हैं और नहीं भी कहना चाहते हैं। देखो देखो आप कहना तो चाहते हैं और नहीं कहने का बहाना बनाते हो, कहना सो कह दो। कह क्या देवे आपकी सती जी अब संसार में नहीं रही कि क्या हुआ कि जो आपने सोचा था और जो आपने कहा था वही हुआ है, तो क्या दक्ष के यज्ञ के अंदर उसने अपना शरीर पूरा कर लिया कि पूरा कर लिया? अब शंकर भगवान ने कहा अच्छी बात है। अब क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी जटा बिखेरी, जटा में से एक जटा के बाल को उखाड़ा, जमीन पर पटका और पटकते ही उसमें से एक बड़ा दिव्य पुरुष निकला, कराल उसके दांत है, मतलब बड़े विकराल दांत है, काला उसका शरीर है, लाल उसके होठ है, बड़ा बलशाली वो पुरुष बना उस जटा के पटकने से। तो उसने आकर के कहा महाराज बताइए क्या आपकी आज्ञा है? मेरी आज्ञा यही है कि मेरे सैनिकों को ले जा करके तुम दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो। क्या अच्छी बात है। अब वो पराक्रमी अपने ही समान बलवान योद्धाओं को लेकर के पहुंचा दक्ष के यज्ञ में। अब वो पहुंचा तो दोपहर का समय था, 11-12 बजे का, और इतनी जोर से आंधी के समान जैसे कोई बथुलिया आवे, आंधी आवे, ऐसा लगा कि ये पंडाल उड़ जाएगा, अथवा ये कोई स्थान हमारा यज्ञ है, अग्नियां सब बुझ जाएंगी। इतनी आंधी कहां से आई कि ये कोई बहुत आदमी दौड़ रहे हैं कि कोई पशु दौड़ रहे हैं। पशु तो भाई सायंकाल के समय में दौड़ते हैं, इस समय में ऐसे आंख फाड़ के देखें तो आंख उनकी धूल से भर गई। और कहते हैं प्राजा प्राचीन वर्णी जीवित हैं तो डाकुओं का दल भी नहीं आ सकता, बात क्या है? ऐसा सोच ही रहे थे कि चारों तरफ से शंकर भगवान के पार्षदों ने उस यज्ञ की भूमि को घेर लिया और घेर करके उस सारे यज्ञ को नष्ट करना चालू कर दिया। कहीं पात्र कहीं पटक दिए और यज्ञ की वेदी के अंदर उन्होंने मिट्टी डाल दी, कहीं जल डाल दिया, कहीं अग्नि को बुझा दिया। कोई विरोध करने लगे तो उनको उठा उठा के पटकने लगे, किसी के मुक्का, किसी के थाप, किसी के लात, ऐसे करते करते वह बड़ा भयंकर वहां युद्ध हुआ। कहते हैं भृगुम भवंद मणिमान, मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया, वीरभद्र प्रजापतिम, और उस वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, चंडीश ने पूषा को पकड़ लिया, और नंदीश्वर ने भक को पकड़ लिया, और फिर वहां पर बड़ा इनके आपस में युद्ध होने लगा। कहते हैं वीरभद्र ने उस समय में यहां भृगु जी की दाढ़ी थी, उस दाढ़ी को पकड़ करके खींच लिया, और जो पूषा थे उनके मुंह के ऊपर मुक्का मारा तो उनके दांत वगैरह सब टूट गए, और तलवार लेकर के दक्ष का सिर काटे तो वो सिर कटे ही नहीं। देखा ये ऐसा कैसा सिर है भाई। फिर संज्ञपन विधि से उनका सिर काटा, जिस विधि से यज्ञ के पशु का सिर काटा जाता है उसी विधि से उनका सिर काट दिया गया। तब सब ने कहा अच्छी बात है। फिर भूतों ने, प्रेतों ने, पिशाचों ने सब यज्ञ को नष्ट कर दिया और अपने अपने स्थान पर सब चले गए। अब देखो ध्यान देने की जो बात थी वो अब आती है इस अध्याय में। अब सबके सब देवता लोग आपस में विचार करेंगे क्या करें, शंकर भी कम नहीं है, दक्ष का तो गला काट ही दिया गया, अब क्या करें, और यज्ञ ही अधूरा रह गया। तो सब बिचारे पराजित होकर के सब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हमारा यज्ञ है वो शंकर के दूतों ने नष्ट कर दिया, आप जैसे तैसे कोई कृपा करो। कहने के लिए भाई अकेले अकेले तुम माल खाने के लिए चले गए, उस समय हमको बुलाया नहीं, और जब तुम्हारे मार पड़ी है तब तुम हमारे पास आए हो। आपको विचार करना चाहिए, तेजी यसी कृतागसी, अरे कोई किसी का अपराध करे तो कोई बलवान के साथ विरोध करे, ये कोई नीति है क्या? तुमने कितने तेजस्वी पुरुष के साथ बैर कर लिया, यदि शंकर को वहां नहीं बुलाया था तो तुम सब देवताओं को कह देना चाहिएगा हम नहीं आएंगे। क्या कर लेते ये दक्ष, ज्यादा से ज्यादा दक्ष मेरे पास आता तो मैं अपने आप निर्णय करता। उस समय तुम यज्ञ के दक्षिणा के यज्ञ के भाग से लालायित होकर तुम चले गए, और अब तुम जब उनके शंकर का प्रताप देखे हो तो हमारे पास आए हो। खैर कोई बात नहीं, कृतकिल विषा, तुमसे अपराध तो हो गया है लेकिन फिर भी अब शंकर को हम प्रसन्न करते हैं, आओ मेरे साथ चलो। अब वे वहां से रवाना हुए और शंकर भगवान को मनाने के लिए वे वहां से रवाना हुए तो कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर भी थोड़ा सा तो कैलाश पर्वत था नहीं, बहुत विशाल वो कैलाश पर्वत है। तरह तरह के वहां पर वृक्ष हैं और वृक्षों के अंदर तरह तरह के पशु पक्षियों की बड़ी मीठी आवाज आ रही है। कैलाश वृक्ष, कैलाश पर्वत के वहां तरह तरह की लताएं हैं जिनसे बहुत सुंदर सुगंधी आ रही है। विचित्र विचित्र प्राणियों के वहां दर्शन हो रहे हैं। उस कैलाश पर्वत पर चलते चलते उन्होंने अलकापुरी को देखा, यक्षों की पुरी को देखा। उसके बाद सौगंधिक वन में पहुंचे और वहां नंदा और अलकनंदा ये दो नदियां बहती हैं। नदियों के अंदर जहां देवता देवांगनाएं स्नान करती हैं, इन नदियों के दर्शन किए और फिर और आगे गए, और आगे जाने के बाद एक बहुत बड़ा वटवृक्ष देखा। आप ध्यान से सुनना शंकर भगवान ही क्या मुद्रा बताते हैं, ध्यान बताते हैं शंकर भगवान का विचित्र। कहते हैं भागवतकार न तो विष्णु का पक्ष लेती है न शिव जी का पक्ष लेती है, भागवतकार तो सत्यम परम धीमही, सत्य का पक्ष लेती है। अब वो वटवृक्ष देखा तो इतना विशाल वटवृक्ष है, 400 कोस में तो फैला हुआ है, 400 कोस तो ऊंचा है और 300 कोस तक उसकी डालियां फैली हुई है। जहां किसी प्रकार से आतप है नहीं, गर्मी है नहीं, बहुत ठंडा है, वहां जाकर के हर कोई आदमी शांति को प्राप्त कर सकता है। निर्निड है, वहां पर कोई पशु पक्षियों का घोंसला भी नहीं है, बहुत पवित्र वो वटवृक्ष है। बड़े बड़े मुमुक्षु लोगों ने वहां शरण ले रखी है, इतना विशाल वो वटवृक्ष है। वहां जाकर शंकर भगवान को देखा, देवताओं के तो खलबली मची हुई, और शंकर भगवान को देखा तो कैसे है, एकदम शांत रूप में बैठे हुए। शंकर भगवान ने अपना चरण है वो दाहे गोडे पर रख रखा है, और सुनंद नंद आदि उनके पास में बहुत से लोग खड़े हुए हैं सेवा में। ये यक्ष और ये कुबेर है जो कि शंकर का मित्र है, वो भी उनकी उपासना के अंदर खड़ा हुआ है वहां। और विद्या तपो योग पथमास्तितम तम अधीश्वरम चरंतम विश्व सुरिदम, सारे संसार का कल्याण करने वाले भगवान शंकर विद्या की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, योग की मानो मूर्ति है, भस्म उन्होंने लगा रखी है, जटा उनकी बांधी हुई है, बड़ा ही दिव्य उनका रूप है। और अंगेन संध्या प्ररुचा चंद्र लेखांश विभ्रताम, और मस्तक के ऊपर उनके चंद्रमा की रेखा है, और उन्होंने रुद्राक्ष पहन रखा है, एक चटाई के ऊपर बैठे हुए हैं, और नारद जी महाराज सामने बैठे हैं, सनकादि ऋषि उनके सामने बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, और क्या चर्चा चल रही है जी कि ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म का विवेचन चल रहा है, और शंकर भगवान यूं तर्क मुद्रा में बैठे हुए, ये तर्जनी अंगुली और अंगूठा इन दोनों को मिलाना और बाकी अंगुलियों को यूं सीधा रखना, ये तर्क मुद्रा है, उस तर्क मुद्रा में बैठे हुए, बड़ी शांति उनके चेहरे से टपक रही है। अरे ससुर ने अपमान कर दिया, देवताओं के बीच में अपमान हो गया, और स्त्री उनकी मर गई, कोई बाबा को फिकर नहीं है, बड़े शांति के साथ बैठे हुए। बाहुम प्रकोष्ठे अक्षमालाम आसीनम तर्क मुद्रया, बड़े तर्क मुद्रा से बैठे हैं, और तम न ब्रह्म निर्वाण समाधि आश्रितम, निर्वाण ब्रह्म की वहां पर व्याख्या चल रही है। ऐसे उस स्वरूप को देवताओं ने देखा कि देवरे ये भी कोई जीवन होता है जिनका यज्ञ के अंदर हिस्सा नहीं, इतना बड़ा जाति में अपमान, सबसे बड़ा दुख होता है जाति का अपमान, तो सबके बीच में अपमान हुआ तो इनको कोई अंतर नहीं, अब सबके सब लोकपाल वगैरह सब घबराए, देवता भी घबराए, अब तो ब्रह्मा जी के साथ में गए, ब्रह्मा जी ऐसा स्वरूप शंकर भगवान का, इतना क्रोध रूप भी है, इतना शांत रूप भी है, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग बड़ी शांति से चुपचाप रहो। ब्रह्मा जी गए पास में, कहने लगे क्यों जी शंकर भगवान आप ठीक तो हैं? शंकर जी खड़े हुए आसन पर बैठा है, और बड़े प्रेम से उनसे मिले, और मिले तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो शंकर जी, आप संसार के महाकारण हैं, आप संसार को बनाने वाले हैं, आप इस संसार का पालन करने वाले हैं, आप इस संसार को अपने में समेटने वाले हैं, ये दक्ष बिचारे यज्ञ करते हैं, दक्ष आदि जैसे जितने भी यज्ञ करने वाले, ये आपकी बनाई हुई मर्यादा का ही पालन करते हैं, ब्राह्मण है उस यज्ञ के लिए कितने कितने नियम का पालन करते हैं, आप मंगलों के मंगल हैं और अमंगलों को आप नष्ट कर देने वाले हैं, आपके चरणों में जो अपने कर्मों को अर्पित कर देते हैं उनका कल्याण हो जाता है, जिनका हृदय दूषित होता है वे लोग आप में और दूसरों में भेद देखा करते हैं, और जब भगवान की माया उनके हृदय से निकल जाती है तब सब जगह वे लोग आप ही आपका रूप देखा करते हैं, इसलिए आप तो बड़े क्षमाशील हैं, यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा संसार में क्षमा नाम की चीज कहाँ रहेगी, इसलिए चलो आप दक्ष का यज्ञ है उसको पूरा करो, दक्ष के ऊपर आप कृपा कर दो, वो जीवित हो जाए, और भृगु जी की तो दाढ़ियां लोच ली गई थी उनके वापिस दाढ़ी आ जाए, पूषा के दांत नहीं उसके दांत आ जाए, और जितने देवताओं के किसी के हाथ पैर टूटा उनके हाथ पैर लग जाए, और आप क्षमा करो सबके ऊपर। ऐसी बात ब्रह्मा जी ने कही। अब शंकर भगवान क्या कहते हैं वो सुनना। शंकर भगवान कहते हैं कि ओहो मैं तो भूल ही गया कि क्या क्या हुआ। नागम प्रदेश बाला नाम वर्णये नानु चिंतये, मैं इन बाल बच्चों की किलोलियों को, इन बाल बच्चों के खेल को मैं क्यों तो याद रखूं, क्यों मैं चिंता करूं, मेरे को हमें तो अब आपने याद दिलाया तब पता चला है कि दक्ष ने कोई ऐसा किया और मेरी पत्नी वहां पर जल करके भस्म हो गई, मुझे तो याद ही नहीं आया, आपने याद दिलाया है क्षमा करने के बहाने से।